بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير سنة محترم کل کچھ مطالب سورة تغابن کے پہلی آیت کے حوالے سے بیان ہوئے اس پہلی آیت کے اندر سب سے پہلے خدا کی تسبیح کا ذکر ہے کہ سماوات و عرض کے اندر زمین و آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کے سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ تسبیح جو ہے یعنی خدا کو ہر قسم کے عیب اور برائی سے نقص سے پاک سمجھنا مبرہ سمجھنا یہ فقط انسانوں کی حد تک محدود نہیں ہے کہ وہ انسان جو کہ خدا کی معرفت رکھتے ہوں اور شعور کے ساتھ اور آگاہی اور علم کے ساتھ تسبیح کریں بلکہ تمام کی تمام موجودات جو کہ اس جہان کے اندر اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں سب کے سب تسبیح کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ کس طرح سے یہ تسبیح باقی موجودات جن کو ہم دیکھتے ہیں ظاہراً ان کے پاس شعور نہیں ہے اور آگاہی نہیں ہے بے جان موجودات بھی ہیں اس میں بے جان بھی ہیں جاندار بھی ہیں لیکن جاندار میں انسانوں کے علاوہ ہمارے پاس حیوانات بھی ہیں نباتات بھی ہیں تو یہ سب موجودات جو ہیں کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ مختصر سی توضیح دینے کی کوشش ہوئی اس کے بعد جو ہے اسی پہلی آیت کے اندر تسبیح کے بعد خدا کی تین صفات کا ذکر ہوا ایک کہ ملک اس کے لیے ہے حمد اس کے لیے ہے اور خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور جو ہے وہ قدیر کی صفت سے جو ہے خدا کو یاد کیا گیا کچھ مطالب اسی انہی تین صفات کے حوالے سے کہ خدا کے پاس ملک ہے یا یوں کہیں کہ ملک جو کچھ جو بھی ہے وہ خدا کے لیے ہے اسی طرح سے حمد خدا ہی کے لیے ہے اور خدا قدیر ہے اس کے کچھ مزید تھوڑی بہت تفصیلات کے بعد پھر دوسری آیت کے اندر انشاءاللہ وارد ہوں گے دیکھیں جو دوسری جو صفت جو بیان کی پہلی جو صفت اس آیت کے اندر اس تسبیح خدا کے بعد جو بیان ہوئی کہ خدا جو ہے اس کے پاس ملک ہے اور ملک کے حوالے سے کل تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی کہ یعنی مقصود اس کا یہ مالکیت نہیں ہے کہ انسان خدا کو جو مالک ہے کہ خدا ہر چیز کا مالک ہے مالک میں اور صاحب ملک ہونے میں فرق ہے انسان ممکن ہے بعض چیزوں کا مالک ہو لیکن اس کا اختیار اس پر نہ ہو بس ملک جو ہے وہ ایک بالاتر مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں پہ اختیار کسی چیز کا حاصل ہونا وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو ملک حاصل ہے جس سے بادشاہی نکلی ہے اور کیوں اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں بادشاہ عام ایک فہم عرفی کے مطابق عام انسان کس طرح سمجھتا ہے ایک بادشاہ کو کہ وہ ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے اب اسی طرح سے یہاں پہ بھی مالک سے اور ملکیت سے اس کو جو ہے وہ فرق کرنے کی ضرورت ہے انسان آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کا یا بہت سے چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر مالک ہوتا ہے اپنے مال کا مالک ہے چیزوں کا مالک ہے لیکن اس کے اندر کیا اس کو ہر قسم کا اختیار ہے کہ وہ تصرف کر سکے اس کو استعمال کر سکے کہتے نہیں عقلاء جو ہیں انسانوں کے اپنے ہی مال میں اس کو ہر طرح سے جیسے وہ چاہے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے عقلاء کبھی بھی انسانوں کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا مال جو ہے اس کے پاس جو ہے پیسہ ہے مال ہے مختلف قسم کا جو اس کی چیزیں موجود ہیں اس کو آگ لگا دے اس کو ضائع کر دے اس کو جو ہے یعنی وہ کہے کہ میں تو اس کا مالک ہوں مجھے جو ہے اس میں اختیار ہونا چاہیے تو وہاں پہ کہتے ہیں نہیں تو مالک ضرور ہے لیکن مالک ہونا اور چیز ہے اختیار ہونا اور چیز ہے تو یہاں پہ بھی خدا کے لیے ملک کا تذکرہ کیا گیا کہ خدا جو ہے ہر وہ صاحب ملک ہے ہر قسم کا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے اب اس ملک کے اندر اس کو کسی چیز سے محدود نہیں کیا گیا کہ یہ ملک جو خدا کا ہے خدا کو حاصل ہے اور اس کی جو صاحب اختیار ہونا ہے یہ کسی خاص چیز سے محدود کیا گیا ہو کہ انسانوں سے ہے انسانوں کے بھی جسم سے ہے انسانوں کی روح سے ہے یا زمین سے ہے آسمان سے ہے کسی خاص چیز سے اس کو مقید نہیں کیا گیا کہ ہم کہیں کہ فقط اس کی بات ہو نہیں ملک ہے اس کے لیے جتنا بھی جہاں جہاں بھی تصور ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر اختیار کہیں پہ بھی تو وہ اختیار خدا کو حاصل ہے کہ خدا جس طرح سے چاہے اس چیز کے اندر تصرف کر سکتا ہے باقی لوگوں کو اگر تصرف کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو ان کو خدا کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور اس کے اختیار سے ہی اس کی اذن سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور اگر ممکن نہ کوئی کہے کہ نہیں ہم بغیر اس کے اذن کے یہ کام کریں گے تو انسان جس طرح سے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت سارے کام جو خدا کی اذن کے بغیر کرتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہر کام میں خدا کا اذن لیتا ہو تو یہ پھر کس طرح سے ہے تو پھر उसकी बहस दोबारा से वो आ जाएगी कि खुदा ही ने इंसान को एक बाख्तियार मखलूक हल किया है, लेकिन अगर वो तमाम कामों को खुदा के इज्न से यानी जिस तरह जिस रास्ते में खुदा चाहता है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको तसरुफ नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा उसकी नेमत दी हुई नेमतों को, तो उसको बिलाखिर एक दिन आके जवाब देना होगा कि उसने इन चीज़ों को सही जगह इस्तेमाल किया इस्तेमाल नहीं किया। या जिस तरह से हम कह सकते हैं एक और उसको एंगल से देख सकते हैं कि एक हमारे पास तसरुफ होता है जो जायज़ होता है, एक होता है नाजायज़। कहते हैं कि इस शख्स ने जो है इस जगह पर नाजायज़ तसरुफ किया हुआ है, उसको हक नहीं था इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन उसने फर्ज करने उस पर कब्जा किया हुआ, नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसको हक नहीं था कि इस जगह पे जो है इमारत खड़ी करता, लेकिन उसने इस पर कब्जा करके यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको कहते हैं नाजायज तसरुफ करना किसी जगह पर। तो इंसान भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी तसरुफात करता है, बहुत सारे इस्तेमाल करता है, बहुत किस्म के यूजेस जो है इन नेमतों के करता है, लेकिन क्या हर किस्म का यूज सही है या नहीं? नहीं, बहुत सारे जो इस्तेमाल हैं वो नाजायज तसरुफात हैं, बहुत सारे तसरुफात जो हैं वो गासिबाना जो जिसे कहते हैं कि कब्जा किया हुआ इंसान ने, उसको हक नहीं इस काम को अंजाम देने का। बस ये मुल्क जो है वो किसी खास चीज से महदूद नहीं किया खुदा ने हर चीज। अब जब हर चीज है इसमें अशिया बेजान हो बाजान जानदार हो, हर किस्म की चीजें इंसान की अपनी जात के अंदर उसके जिस्म से उसका उसकी रूह से ताल्लुक हो उसके ख्याल से ताल्लुक हो उसके हर यानी हत्ता हम 15 शाबान की जो शब 15 शाबान की दुआ में से एक दुआ जो जाहिरन सजदे में जाके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको पढ़ते थे वो के जो हम तक नकल हुई है कि ऐ खुदा तेरी बारगाह में मेरे सजद अल्लाह का सवादी व ख्याली, हत्ता मेरे ख्यालात भी जो है तेरे बारगाह में जो है उन्होंने सजदा किया, यानी हर चीज जो है तेरे सामने जो तस्लीम है, यानी मैं बगैर तेरी इज्न के बगैर तेरी जहाँ पे तेरा इज्न ना हो तेरी रिजायत उसमें शामिल ना हो तो मेरे अंदर का बातिन बातिन जो है अंदरूनी जो इंसान का बिल्कुल है जिससे से वो बाखबर है हर वो चीज जो है वो ऐ खुदा तेरे सामने जो उसने सजदा की, मेरा पूरा वजूद जो है तेरे सामने जो है वो सारे तस्लीम खम किए हुए, और मेरे हत्ता मेरे ख्यालात भी जो है तेरे सामने सारे तस्लीम खम किए हुए। इस तरह से ये वो चीज़ है कि जो इस दुआ के अंदर हमको नजर आती है। बस इंसान जो है का पूरा खुदा की हाकिमियत के अंदर खुदा के इख्तियार के अंदर। अब जबकि उसको उसकी तमाम चीज़ें खुदा के साथ की खुदा की दी हुई हैं और खुदा ही के इज्न से उसको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हत्ता उसकी जो इस्तेदादात हैं मसलन उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं आया उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। इंसान एक इंसान को खुदा ने बहुत जहीन बनाया यानी उसको बहुत ज्यादा उसकी बाकी लोगों के मुकाबले में जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका जो है वो जहन ज्यादा अच्छा काम करता है, उसको खुदा ने तौफीक दी। आया इस अपनी इस इंटेलिजेंस से अपनी इस जहानत से हर किस्म का काम कर सकता है, चाहे वो इंसानों के फायदे में हो चाहे वो इंसानों के नुकसान में हो। अब देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे माइंड्स होते हैं लेकिन वो क्या काम कर रहे होते हैं, इंसानों के नुकसान में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे इक्तिसाद की फील्ड में हो, सियासत की फील्ड में हो, हत्ता इल्म की टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो। अब ये शख्स है, इसके पास माइंड है, इसके पास सलाहियत है, सब कुछ है, लेकिन उसको कैसी जगह इस्तेमाल कर रहा है कि बजाय इसके कि इंसानों की हयात का बायस हो मसलन वो इंसानों की जो है मौत का बायस हो रहा है। एक शख्स जो है वो इन्हीं अपनी इस इल्म के जरिए से इन टेक्नोलॉजी के जरिए से बजाय इसके कि इंसानों की जो है वो उनको शिफायाब करे बल्कि पहले क्या करता है उनको जो है वो बीमार किया जाता है, उसके बाद जो उसकी जो है वो दवा लाई जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हमारी दुनिया में हमको देखते हैं कि मौजूद हैं, तो ये भी उसका एक माइंड है, एक शैतानी माइंड है, लेकिन एक शैतानी माइंड नहीं है बल्कि एक जो है खुदा के लिए काम करता है, वो खुदा उसको जो है वो इंसानों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, वो मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालता है, अगर बीमारियां वाकई वजूद रखती हैं तो उसके हल के लिए कोशिश करता है, एक जो है माशा जो कि माशरती लिहाज से सकाफती लिहाज से बीमार हो चुका है उसको सही करने की कोशिश करता है, बाज़ लोग इसके बरक्स काम कर रहे होते हैं। तो ये माइंड जो है जो कैपेबिलिटीज हैं सलाहियतें हैं, क्या मैं अपनी सलाहियत को हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक शख्स है खुदा ने उसको अच्छी आवाज़ दी है, क्या उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकता है? उसको जो इख्तियार है कि उसको चाहे वो कुरान के लिए भी इस्तेमाल करे, और क्या उसको ये इख्तियार हासिल है कि उसको जैसे फोश अशआर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करे? कि ये नहीं, उसको इख्तियार नहीं। तो हर वो चीज़ जो है इंसान की एक एक चीज़ जो है उसका एक एक फेल उसका हरकत हर उसका ख्याल उस तमाम चीज़ें जो है इंसान के खुदा के इज़्ज़त से होनी चाहिए। अब देखें ये जो मफहूम है लहुल मुल्क का कि खुदा को जो है मुल्क हासिल, इस के अंदर जितना भी इंसान तवज्जो करता चला जाए, इसमें तफक्कुर करता चला जाए, इस पर गौर करता चला जाए कि मुल्क खुदा के लिए खुदा ही को हासिल है, खुदा को इख्तियार हासिल है, जब हर चीज़ के अंदर ये चीज़ उसके सामने आएगी, ये कॉन्सेप्ट उसके सामने आएगा, अब यहाँ से जो नतायज हासिल होंगे दो तीन उसके जो है उन्होंने मिसालों के तौर पर के सामने बयान करने की कोशिश की कि आसार इसके जो है इसके फ्रूट्स कहाँ पर जाहिर होते हैं। एक उन्होंने कहा कि जो अखलाक इस्लामी की जो फाउंडेशन है, अब देखें किस तरह से इसी लहुल मुल्क से जो है वो सामने आती है, किस तरह से अखलाक इस्लामी में, और बाकी जो हमारे पास सिस्टम्स है दुनिया के अंदर जहाँ पे, वो भी अखलाक और एथिक्स की बात करते हैं, उस बुनियादी फर्क है। बाकी लोग जब एथिक्स की बात करते हैं, अच्छे अखलाक की बात करते हैं, तो उनकी ज्यादातर तवज्जो किस चीज़ पर होती है? उनकी तवज्जो इस पर होती है कि इंसान किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करे ताकि लोगों के दरमियान ज्यादा महबूब करार पाए, और उसकी ज़िंदगी जो है वो लोगों के दरमियान जब महबूब करार पाएगा तो उसके मुनाफे में है, उसके जो है बेनिफिट के अंदर है, कि लोग जब उसके साथ उसकी दोस्ती होगी, उसके रिलेशन अच्छे होंगे, तो अपनी ज़िंदगी को जो है स्मूथली चला सकेगा। अगर इस शख्स के जो है कोई उसको पसंद नहीं करता होगा, उसके साथ जो है हमेशा जो है लोगों के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे, तो उसके काम नहीं होंगे। यानी हर चीज़ महवरियत उसकी अपनी ज़ात है कि मैं किस तरह से इस दुनिया के अंदर एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकूँ जो स्मूथली जो है कि मेरे काम होते चले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर्स मुझे मिलते चले जाएँ, रुकावटें ना हो, और इसलिए सारे उसका काम करता है। क्यों लोगों से अच्छी तरह मिलता है? ताकि उसको फायदा हो। क्यों जो है किसी की मदद कर रहा है, क्यों जो है चैरिटी दे रहा है, क्यों इस तमाम काम जो है बाजायर हमको अच्छे नजर आ रहे हैं कर रहा है, उसका फायदा खुद उसकी जात की तरफ पलटता है कि मुझे जो है इसमें फायदा हो। क्या अखलाक इस्लामी भी इसी तरह से है कि उसकी जो महवरियत इंसान इंसान की जात है? नहीं, उसकी महवरियत खुदा की जात है। लहुल मुल्क, दोबारा से इंसान तवज्जो करे कि इसका मतलब क्या है लहुल मुल्क। जब मैंने कह दिया कि खुदा ही के लिए मुल्क है, तमाम इख्तियारात खुदा के हैं, तो अब मेरे जब हर चीज उसकी है तो मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा, मेरा अपना इख्तियार मेरे अपने जिस्म पे भी नहीं रहा, मेरे अपनी रूह पे मेरा कुछ इख्तियार नहीं है। जब मेरा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है और हर चीज को मैं देखता हूँ कि खुदा की इजाजत से होनी चाहिए, खुद हर चीज खुदा के लिए है और उसी की राह में इसको जो है इस्तेमाल होना चाहिए। हर चीज जब खुदा की है, नेमतें खुदा की है, तो उसको इस्तेमाल भी खुदा के लिए होना चाहिए, उसी के राह में होना चाहिए। अब मेरे पास अगर माल है और मैं साहिब खुदा ने मुझे माल दिया है, कुदरत दी है, दौलत दी है, तो अब मैं किस राह में इसको इस्तेमाल करूँ, किस हदफ के तहत इसको इस्तेमाल करूँ, किस लिए इस्तेमाल करूँ? हर तरह से उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने फायदे के लिए? नहीं, वो कहेगा कि नहीं। जब इस किस्म की जिसके पास थिंकिंग होगी, जो कहेगा हर खुदा के लिए तमाम चीजें हैं, मेरा माल भी खुदा का माल है, तो उसको इस्तेमाल करने में भी देखेगा कि अगर इंसान जो है मैं देख रहा हूँ कि वो उसके पास नहीं है, और एक शख्स जो मेरे पास इस्तेआत है, मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं खुदा के लिए उसकी हेल्प करूँ, ना कि इसलिए कि ताकि जो है मुझे इसका रिटर्न जो है, इसका फायदा जो है मुझ तक पहुंचे, और मुझे जो है लोग जो है मेरी बाह बाह और चाह चाह करें कि कितना जो है वो सखी इंसान है, और उसके जो है कल को जो है मेरे उसके फायदे जो है मुझको हासिल। नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खुदा की मखलूक है और माल भी खुदा का माल है, वो उसको खुदा के रास्ते में खर्च होना चाहिए। एक मखलूक क्यों जो है वो महरूम रह जाए, किस पास पैसे ना होने की वजह से, जो है वसाइल ना होने की वजह से, क्यों किसी की औलाद जो है वो जाहिल रह जाए, क्यों किसी की औलाद जो है वो उसके पास सही खाना ना हो, उसको जो है उसकी सही रुश ना हो सके, सही ग्रोथ ना हो सके, तमाम तमाम चीजें जो है छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये माल फकत खुदा ने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं उसको उसकी इजाजत से खर्च कर सकूँ, मुझे इस चीज का इख्तियार दिया गया। ये तो इख्तियार नहीं दिया खुदा ने कि मैं इस माल को जो है वो जमा करता रहूँ, जमा करता हूँ, जमा करता हूँ, इस जिसकी जो है वो शदीद तरीके से मजम्मत कुरान में कई जगह पे की गई कि वो लोग जो के कंस करते हैं मालों को, अपने मालों के अंबार पे अंबार लगाते चले आते हैं। इंसान की खुदा ने बाज जगह पे इस तरह से ये वो इंसान जो के माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और चाहता है कि उसकी जो सिक्कों की जो आवाज है उसकी, वो उसकी पसंद है कि जब वो आज के जमाने में तो सिक्के खत्म हो गए, वो सब कार्ड वाला सिस्टम है, लेकिन एक जमाने में, यानी उस जमाने में जब वो सिक्के हुआ करते थे, तब तो इंसान इस हद तक माल से मोहब्बत करता है कि इसकी जो सिक्कों की आवाज है उसको पसंद आती है, इस हद तक इंसान इस चले जाता है कि बस माल जमा करता चला जाए, चाहे इंसान खुद अपने पर भी खर्च नहीं करता, फिर वो इतना ज्यादा माल का जो है आशिक हो जाता है कि कहीं इसको खर्च करेगा तो खत्म ना हो जाए। खैर, तो यही इस तरह का जो इंसान है, अब इसके अंदर देखें तवाज़ो आता है। इंसान जब देखता है कि ये इल्म मेरे पास जो है मेरा अपना तो हासिल किया हुआ नहीं है, और अगर मैंने उसको अपनी, अगर मैंने खुदा की दी हुई मेहनत से उसको हासिल किया भी है, तो इसके अंदर दूसरों का हक है कि इसको जो है दूसरों तक पहुंचाया जाए, दूसरों को भी जो है इस इल्म के जबर से जो है वो आरास्ता किया जाए। और इंसान जब देखता है कि इसको मैं मुझे सही एक खास डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है, किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करता करना, इन तमाम चीजें जब देखता है, तो उसके अंदर एक तरह से तवाजो आता है, एक तरह से उसके अंदर जो है वो इन कवानीन के मुताबिक के आगे, खुदा के इन तमाम अहकाम के आगे जो है वो झुकता है, कहता है कि हर जगह जहाँ तू खुदा चाहता है मैं उसको वहां पर इस्तेमाल करूंगा इस इल्म को, और उस चीज को हासिल करूंगा, उसी चीज को जो है फैलाने की कोशिश करूंगा। तो ये तमाम चीजें जो इंसान के अंदर वजूद में आती है, इंसान का एहसान करना, लोगों पे करम करना, इंसान के साथ तरह किसी पर तरहम किसी पर रहम खाना जिसे कहते हैं, उसकी मदद करना, ये तमाम सिफात जो है वो कहाँ से निकल रही हैं? इसलिए कि देखता है कि मेरा अपना तो ये कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ, और खुदा की जहाँ पे मर्जी होगी मैं उसको वहीं पे खर्च करूंगा। तो ये इस्लाम की जो अखलाक इस्लामी है, खुद ब खुद उसका महवरियत क्या बन जाती है, इंसान की अपनी ज़ात नहीं बनती, फिर उसकी महवरियत जो है वो खुदा की होती है, हर चीज़ जो है खुदा के गिर्द घूम रही है। बस महवरियत जब इंसान नहीं होगी, खुदा हो जाएगी, तो ये मनियत जो है, जो अनानियत, तो उसकी बाहर निकल जाएगी। फिर जब अनानियत बाहर निकल जाएगी, तो कितने ही मफासद अखलाकी जो है, कितने ही मुश्किलात, बुराई, अखलाकी बुराइयां जो हैं, कितना ही जुल्म जो माशरे में, जुल्म की एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि इंसान हर चीज़ को चाहता है अपने लिए ले ले, कि वो जमा कर ले, वो महवर बन जाए, हर चीज़ उसके लिए हो, हर सब लोग उसके खादिम हो, सब लोग उसकी जो है इताअत करें। ये जो मनियत है, जो इताअत कर, ये जो इंसान चाहता है कि सब उसके गिर्द आ जाए, ये जो बायस बनता है कि इतने सारे जो हम माशरे के अंदर मफासद देख रहे हैं, इतने सारे जुल्म देख रहे हैं, हुकूक का जो है वो छीनना देख रहे हैं, तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं कि इंसान हर चीज़ को अपने लिए चाहते। लेकिन जब असल जो खुदा हो जाए, जब महवर खुदा की जात हो जाए, तो इंसान फिर जो है लेने के ऊपर नहीं, बल्कि जो है देने के ऊपर जो है तवज्जो करता है कि मैं दूं कुछ खुदा की राह में। क्यों? क्योंकि इस चीज को अपने लिए बायस से कमाल समझता है। अगर इंसान अपने आप को महवर बना ले, तो कमाल किस में होगा? जब महवर मैं हूं, तो मुझे जो है ग्रो करना चाहिए हर चीज के अंदर, इस दुनिया के अंदर मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे पास जो है तमाम चीज आ जाए, ताकि मैं इस चीज को जब देखेगा तो अपने लिए हर चीज को जमा करता चला जाएगा, हर किस्म का फिर जुल्म वहां पे जो है वो जुल्म जोर जो है उस माशरे के अंदर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हर इंसान जो है वो बजाय इसके कि दे लेने के चक्कर में, चाहे कहीं से भी उसको मिल जाए, क्योंकि उसका कमाल वो इस चीज में देखता है। लेकिन जो जिसकी थिंकिंग ही बिल्कुल बरक्स हो जाए, जो खुदा महवर हो जाए, फिर वो हर चीज को देखता है कि खुदा की रजायत किस में, जब खुदा कहता है मुझे ये पसंद है कि तुम उस रास को खुदा मेरे रास्ते में दे दो, तो उसको देने में मजा आता है, उसको लेने में फिर मजा, या तो वो फिर ईसार करता है। और फिर आप देखते हैं किस तरह से इंसान की, उन इंसानों के हक में जो है आयात नाजिल होती है, उनकी शान में आयात नाजिल होती है कि ये खुद भूखे हैं लेकिन जो है दूसरों को खिला देते हैं। तो ये इंसान जो है खुदा की खातिर हर काम करता है। क्यों? क्योंकि महवरियत जो है खुदा को हासिल हो जाती है। किस हद तक जो है जमीन था आसमान इन इन चीजों के अंदर फर्क है। एक इंसान जिसे आप कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म के अंदर क्या होता है, इंसान आजाद है, इंसान आजाद यानी क्या, हर काम खुद कर सकता है, उसको किसी चीज ने जो कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सिस्टम है इस्लाम का, बिल्कुल बरअक्स है लिबरलिज्म के। असल दीन जो है वो लिबरलिज्म की बिल्कुल जैसे कहते हैं 180 डिग्री के ऊपर। लिबरलिज्म इंसान को आजाद कर देता है हर चीज से, और दीन इसके बिल्कुल बरक्स है। दीन कहता है हर, तुम किसने कहा तुम, ये जो नारा है कि इंसान आजाद है, आजाद है, ये गलत माना के अंदर उसको जो है बयान किया जाता है। यानी वो आजादी का जो कॉन्सेप्ट है जिसको इंसान, हर इंसान पसंद करता है, वो उस आजादी के उस पसंदीदा कॉन्सेप्ट को लेके गलत जगह पे अप्लाई करके जो है गलत मतलब लाने की कोशिश की जाती है, और इससे इंसान को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, और इंसान को कहा जाता है कि तुम आजाद हो, यानी कि हर चीज से आजाद हो, यानी दीन से भी आजाद हो, खुदा से भी आजाद हो, अखलाक से भी आजाद हो, हर किस्म के अकदार से भी आजाद हो, तुम्हें किसी चीज के सामने जो है वो मुकैद होने की, कंट्रोल रहने की जरूरत नहीं, तुमको जो चाहे तुम कर सकते हो। लेकिन दीन इंसान को क्या आगे क्या कहते हैं, तुम जो है वो खुदा के बंदे हो। आजाद किसने कहा इंसान आजाद है? इंसान बंदा है, गुलाम से कहते हैं वो जो कॉन्सेप्ट है गुलाम वाला, कि हर चीज का जो इख्तियार उसके मालिक के पास है, इसी तरह से इंसान अब्द है, अब्द है खुदा के सामने जो है वो सर तस्लीम उसका खाम है कि हर चीज जो खुदा मुझसे कहेगा मैं वही कर सकता हूँ। हाँ, किस माना में इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के मुकाबले में, इंसान को जो है वो कहा गया कि किसी और इंसान के आगे जो है तुमको सर अपना नहीं झुकाना, तुम खुदा के आगे जो है वो सर तस्लीम अपना खम करो, ना कि दूसरे इंसान, बाकी दूसरे इंसान भी तुम्हारे ही तरह इंसान है, उनके आगे अपने सर ना झुकाओ। और इससे देखें किस तरह से फिर वो जुल्म का जो है माशरे में जो वो उसका खात्मा होता है, कि इंसान क्यों किसी के आगे जो है सर झुकाए, वो भी इंसान उसकी तरह का है। तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है, किस हद तक देखते हैं कि हम अगर हम सही ना समझे इन मतालब को, तो हम लोग उसी नारों के अंदर जो कि हुकूक बशर के नारे और ह्यूमन राइट्स के, जो हमने खुद इंसान ने अपने जाम में बना लिया, कि जिसका इंशाल्लाह आज या कल इंशाल्लाह कोशिश होगी तस्करा, ये ह्यूमन राइट्स और ये तमाम चीज़ें जो हमने बना ली हैं खुद साख्ता, और फिर इसके अंदर देखें माशा जो है वो दुनिया किस हद तक जो है फसाद की जाने बढ़ती चली जा रही है। बज़ाहिर नारे अच्छे हैं, आप कहें इंसानी हुकूक और हुकूक बशर और तमाम चीज़ें, लेकिन बेसिस इसकी गलत है, बुनियाद ही गलत है। तो ये लहुल मुल्क सिर्फ एक चीज़ के, खुद मुल्क खुदा के लिए, इख्तियार खुदा के लिए। आप देखें कि इंसान की पूरी अखलाकी सिस्टम को किस तरह से जो है उसके ऊपर जो बेस होता है इस्लाम का जो निज़ाम अखलाकी, इसी तरह से निज़ाम सियासी और इज्तिमाई जो है, कल भी कुछ गुफ्तगू हुई थी कि इंसान जब देखता है कि इख्तियार उसके लिए है, तो इस जिंदगी के अंदर जब कवानीन है, कौन से कौन कवानीन बनाएगा और कौन उनको नाफिज करेगा, उसका इख्तियार भी खुदा के पास। क्या मैं अपनी जिंदगी गुजारने के कवानीन खुद बना सकता हूँ, जैसा भी कानून बनाना चाहूँ? जिस तरह आप देख रहे हैं आज गर्व के अंदर, इतने ज्यादा पस्ती के अंदर इंसान मुतला हो जाता है, इतना पस्त हो जाता है कि हर कानून जो जिसको भी पार्लियामेंट जो है तस्वीर कर दे, जिसपे जो है अक्सरियत आ रहा 51% जो है वोट दे दें, तो वो कानून में जाता है, चाहे वो कितना ही अखलाकी लिहाज से पस्ती का जो है वो कानून हो, उसके अंदर खास हैवानियत जो है वो हैवानों से ज्यादा पस्त कोई कानून हो वो भी जो है वो आप कर लेते हैं, ठीक है, अक्सरियत उसको चाहती है। तो ये इंसान को यहां तक ले जाता, जब इंसान जो है वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं सब कुछ हूँ और मैं अकले कुल हूँ, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, और तो यहाँ पर इंसान जो है, अब कवानीन जो है कौन नाफिज कर, कौन इसको बनाएगा और कौन नाफिज करेगा, ये इख्तियार इंसान को नहीं दिया खुदा ने, लहुल मुल्क खुदा के लिए मुल्क है, खुदा साहिब इख्तियार है, वही कानून को बनाएगा भी और वही कानून को नाफिज करेगा। नाफिज किसके जरिए से करेगा, अपने पैगम्बरों के जरिए से, अपने इमाम उनके बाद मासूमिन के जरिए से, इमामों के जरिए से, या उनके बाद जिनको भी खुदा चाहेगा उनके जरिए से जो है इन कवानीन को माशरे में नाफिज किया जाएगा। बस ये आपका निज़ाम सियासी भी जो है, निज़ाम सियासी के बेस भी इसी लहुल मुल्क के ऊपर है, निज़ाम अखलाकी की बेस भी इसी लहुल मुल्क के ऊपर है, इसी एक सिफत के अंदर तमाम मतालिब जो है इस इंसान इस्तेफादा कर सकता है, अगर गौर करे इसके ऊपर जो है, फिक्र करे। इसी तरह से जो है जितनी भी तारीफें हैं, गर्चे अगले जो जुमला है कि उसी के लिए मुल्क है, उसी के लिए हमद भी है, लेकिन क्यों उसके लिए हमद है, उसकी इसका जो एक तरह से इस कहते हैं बाजगश जो है वो भी शायद इसी तरफ हो, क्योंकि बयान हुआ था कि हम कहाँ पे होती है, जब एक इंसान, जब कोई इख्तियारी अमल किया जाता है, उस इख्तियारी अमल के ऊपर जब आप तारीफ करते हैं और जो इंसान को अच्छा लगता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त चीज़ है, उसकी तारीफ की जाती है कोई इख्तियारी अमल पे। अगर कोई खुद ब खुद कोई चीज़ जो है हो जाए तो उसके ऊपर हम उसको जो है सना कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो अगर कोई हम कहाँ पर आती है कि जहाँ पे इख्तियार के साथ कोई अमल अंजाम दिया जाए। अब जब खुदा ने इस तमाम कायनात को जो बनाया है, तमाम चीजों को अपने इख्तियार से जो है वजूद में लेकर आया है, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया था, ये चीजें खुद ब खुद बन नहीं बन गई बल्कि खुदा ने उनको अपने इख्तियार से बनाया, तो जितना भी जमाल हमको नजर आता है इस कायनात में वो सबकी बाजगश कहाँ हो जाएगी, सबकी बाजगश जो है खुदा की तरफ हो जाएगी। यानी जब हम तारीफ करेंगे, हम जब इन चीजों को देखेंगे, तो जब तारीफ करेंगे तो क्यों, क्योंकि खुदा साहिब इख्तियार है, इसलिए तमाम सताइशें उसकी तरफ जो है, तमाम तारीफें उसकी तरफ पलट के जाती। बस जहां पे मुल्क है उसका, वहीं पे उसी तरह से लहुल मुल्क व लहुल हम, तमाम सताइश भी जो है खुदा ही के तरफ पलटती है। इसी तरह से इसके आगे जब बढ़ते हैं खुदा इसी आयत के अंदर, यानी इसके अहम तरीन जो कुदरत के बाद और तमाम खुदा जो है कादर है, हर चीज पर कादर है, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हुई थी कल कि खुदा इस के ऊपर क्यों बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि यहूदियों का या शायद काफिरों का जो है वो इस तरह से यहूद के बारे में वाज़े तौर पर कुरान में है कि यहूद क्या 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 कहा करते थे कि यदुल्ला है मगलूला, खुदा के हाथ तो बंधे हुए हैं, यानी फर्ज करें कि इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट था, जो तहरीफ शुदा कॉन्सेप्ट था, कि ये दुनिया को खुदा ने बना के जिस तरह से एक घड़ी है कि जिसको जो है वो चाबी दे के इसको छोड़ दिया जाए, एक घड़ी बनाने वाले ने उसको बनाया है, उसके अंदर उसको चाबी दे दी और अब वो जो है घड़ी चल रही है और उसका घड़ी बनाने वाले से कोई रब्ता नहीं रहा, वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है और उसको जो है वो ऑटोमेटिक है और वो काम कर रही है, और इसी तरह से जिस तरह से उसको बनाया गया उस पर चलती रही। अब क्या इंसान का और खुदा के इस पूरे जहान का खुदा के साथ ये रब्ता है कि खुदा के हाथ जो है यादुल्ला है मगलूला है, खुद नाउज़ुबिल्लाह कि उसके हाथ जो है बंधे हुए हैं, उसको जो जंजीरों के साथ बांध दिया गया है और उसको जो है अब खुदा इसमें कोई तसरुफ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जो है जो कुछ हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है। खुदा उसके मुकाबले में क्या कहता है कि नहीं बल्कि बल यदाहु मबसूततान, खुदा के हाथ खुले हुए हैं, यानी खुदा की यद जो है हाथ जो है कुदरत की निशानी होती है, कुदरत की अलामत होती है, कहते हैं खुदा कादर है, किसने कहा कि खुदा के हाथ, ये तुम लोगों की जो है गलत फहमी के तुम इस तरह से जो है बयान करते हो, नहीं बल्कि खुदा जो है कादर है, खुदा अब भी जो है, ऐसा नहीं कि खुदा ने कायनात को बना के छोड़ दिया अब जैसे चल रहे हो निज़ाम चलते चले जाएगा, नहीं, हर आन में खुदा के इज्न से तमाम काम हो रहा है, अगर खुदा का इज्न एक लम्हे के लिए भी इससे हट जाए, खुदा ये जो इख्तियार जो खुदा ने के जरिए से जब सब पूरी कायनात चल रही है, अगर ये तवज्जो खुदा के एक लम्हे के लिए भी हट जाए तो ये सारा निज़ाम जो खत्म हो जाएगा। इस तरह से उसको बयान किया जाता है, इसका राबता जो बहुत एक अच्छी मिसाल, अलबत्ता एक हद तक इंसान के जहन को नज़दीक करने के लिए जो मिसाल दी जा सकती है कि इंसान के जहन और उसके अंदर जो तस्वरात और जो ख्यालात मौजूद है उनके दरमियान राबता किस किस्म का राबता है, क्या जब मैं किसी चीज़ का तस्वर करता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप एक जो है वो एक एक खूबसूरत बाग का जिसके अंदर ये खसूसियात हो, इस तरह के दरख्त हो, इस तरह के फूल हों, इस तरह के उसके अंदर फल हों, उसके अंदर से जो है इस तरह से पानी की नहर बह रही हो, उसके अंदर इस तरह से परिंदे जो है चहचहा रहे हों, इसका तस्वर करें, आपने फौरन जैसे मैं कह रहा था ये अल्फाज को अदा कर रहा था आपके जहन में तस्वुरात आ रहे थे, आपने दरख्तों की तस्वर किया, फलों को, फूलों को, परिंदों को, सबको तस्वर करते चले गए और आपके जहन में एक पिक्चर बन गई इस बाग की, एक बहुत अच्छे बाग की। अब मैं फौरन आपसे कहूँ अब आप एक किताब का तस्वर करें कि जिस किताब के अंदर इस तरह की उसकी जिल्द है, उसके इस तरह के कागज है, उसके अंदर इस तरह की राइटिंग है, इसका तस्वर जैसे आपने मैं कहा किताब का तस्वर करें, तो उस तस्वर का क्या हुआ कि जो बाग का तस्वर था वो तो खत्म हो गया, अब आप एक नए तस्वर की तरफ आ गए जो कि किताब का तस्वर है। तो वो जो तस्वर कब तक था, जब तक कि मेरी तवज्जो उस बाग की जानिब थी, जब तक वो बाग बाकी था मेरे जहन के अंदर। जैसे ही यानी उस बाग का वजूद जहनी कब तक था, जब तक कि वो मेरी इनायत और तवज्जो उसकी तरफ थी, जैसे ही तवज्जो हट गई किसी और की तरफ आ गई तो वो बाग खत्म हो गया, अब तो जहन में बाग नहीं रहा, अब वो किताब आ गई। तो इसी तरह से है कि इस राबता पूरा जहान जो है कायनात का जो है उसका खुदा के साथ राबता इस हद तक जो है, इससे कहीं ज्यादा, फकत एक मिसाल के समझाने की हद तक की बात थी कि अगर खुदा की तवज्जो ना हो तो यसन कायनात बाकी नहीं रह सकती। इस तरह से इंसान के वजूद ज़हनी जो उसकी तवज्जो के ऊपर जो है बेस करता है, इसी तरह से ये तमाम बस हर हर लम्हे जो है खुदा, चूंकि उसको इनायत है खुदा की, चूंकि खुदा की तवज्जो है और उसकी तजल्लियात हैं, उसके जरिए से तमाम फैज पहुंच रहे हैं, इसलिए जो कायनात बाकी है और कायनात का वजूद भी है और उसकी बका भी उसी वजह से। कि अगर ये इनायत हट जाए, तवज्जोत हट जाए तो नहीं, पर हर लम्हे बस किसने कहा कि खुदा जो है उसके हाथ जो बंधे हुए, नहीं, हर लम्हे खुदा ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, खुदा ही ने इख्तियार, अगर इंसान भी कुछ काम कर रहा है अपने इख्तियार से तो ये इख्तियार उसको खुदा ने दिया, इसलिए जो है काम कर रहा है, वल्ला अगर खुदा ने उसको इख्तियार ना दिया होता तो काम नहीं कर सकता था। बस हर वो काम जो इंसान जो बहुत ज्यादा इतराता है, गुरूर करता है, तकबर करता है खुदा के मुकाबले में, यानी अजीब है कि इंसान वाकई सोचने की बात है कि खुदा ही के इख्तियार, जिसने इख्तियार दिया उसी के इख्तियार को हासिल करने के बाद उसी के सामने आके जो है वो तुगयान करता है, बगावत का इजहार करता है, कहता है मैं इस खुदा को नहीं मानता, खुदा नहीं है। यानी जिसे कहते हैं कि एक बच्चा होता है ना, जिस आप बहुत बहुत सी मरतबा ऐसी बात करता है कि जो हमको बहुत ज्यादा, वो अगर कोई बड़ा कहे तो बहुत ज्यादा बदतमीजी महसूस होगी, लेकिन जब बच्चा कहता है तो हम कहते हैं बेचारा जो है वो क्या है, नासमझ है, उसको जो है वो हंसी में जो है टाल दिया जाता है कि इसको पता नहीं। लेकिन अगर जो है वही काम एक बड़ा इंसान करे, एक बाशऊर इंसान करे, तो उसको जो है मुमकिन है इंसान एक थप्पड़ जो है मारे कि तुम क्या ये बदतमीजी है, लेकिन एक बच्चे से जो है, क्योंकि उसके अंदर शऊर नहीं है। हमारे भी तमाम जो है जो कहते हैं कि हम तो खुदा को नहीं मानते, खुदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी इसकी शान में जो है जो गुस्ताखी की जाती है सबको जो है, शायद खुदा अपने कर्म से कह दो कि तुम लोग जो है वो असल किसी कोई उसी में नहीं, किसी क्या इंसान की हैसियत है कि जो जो इस तरह से खुदा के सामने गुस्ताखी करता है, उसकी वो है क्या। लेकिन इंसान जो तवज्जो नहीं करता, जरा से इन चीजों पर तवज्जो करे, सराबते पे तवज्जो करे, तो इंसान लरज उठेगा कि मैं किसके मुकाबले में गुस्ताखी कर रहा हूँ, आखिर मैं हूं कौन के जो उसके मुकाबले में कहूँ कि नहीं तूने मुझसे ये चाहा लेकिन मैं नहीं चाहता, असल मैं तुझको मानता ही, तू है ही नहीं। अब देखें दुनिया की कितनी बड़ी तादाद जो है उसने इतनी आसानी से कह देती है कि खुदा तो है ही नहीं, लेकिन खुदा का हिल्म देखें कितना ज्यादा है, खुदा की का करम कितना ज्यादा है कि फिर भी इन्हीं लोगों को, इन्हीं काफिरों को, उन्हीं को नेमतें दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको अहम इसकी अहमियत नहीं है। दुनिया दुनिया की अहमियत, अगर दुनिया की इतनी अहमियत होती तो जिस तरह रिवायत में मिलता है इसलिए उन काफिर को जो है वो एक पानी का जो है वो घूंट भी नसीब ना होता, लेकिन वो मसला नहीं, खुदा के करम और उसके हिल्म के मुकाबले में ये खुदा इस तरह से आजाब नहीं करता। तो ये अगर कहाँ से इन तमाम बातों को जो है समझते हैं, इसी लहुल मुल्क से, इसी लहुल हम से, इसी खुदा के कादिर होने से, इसी खुदा की अजमत से, कि खुदा ही ने हमको जो वजूद दिया है, तमाम नेमतें उसी के ऊपर जो है बेस, जितनी भी नेमतें हमको मिलती हैं सबसे पहली जो नेमत हमको मिलती है कौन सी नेमत है, वजूद की नेमत। अगर हमको खुदा ने वजूद ना दिया होता तो ये तमाम जो नेमतें बाकी जो बाद में मुतसव्वर हैं, जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, वो सब बात की हैं। अगर फर्ज करें कि सिर्फ और सिर्फ वजूद जो है हमको खुदा देता और बाकी नेमतें देने वाला कोई और होता, मसलन फर्ज कर लें फर्ज माह के तौर पर कि हाँ उस बाकी नेमतें देने वाला कोई और है लेकिन वजूद देने वाला खुदा है, तब भी सारी हम जो है उसकी तरफ पलटती, क्यों, तमाम जो है वो शुक्र जो है खुदा की तरफ पलटता है, इसलिए कि जब तक वो वजूद ना हो तो इंसान इन तमाम बाकी नेमतों से भी इस्तेफादा नहीं कर सकता। अगर इंसान वजूद में आएगा तो बाकी नेमतों से इस्तेफादा करेगा, तो अगर मैं बाकी नेमतों से इस्तेफादा कर भी रहा हूँ तो सब सब सबकी वजह क्या है कि मैं वजूद में आया हूँ, खुदा ने मुझे वजूद दिया है। अब बाज़ लोग जो है इस तरह से शिकवा करते हैं कि हमको कहाँ जो है खुदा ने बना दिया और जो है वो नहीं बनाया होता, तो अगर जो खुदा को मानने वाला भी है तो और सही मारिफत नहीं रख रहा और शिकवा कर रहा है, तो कहते हैं कि कहाँ हमको मुसीबत में जो है फंस गए और किसने कहा था कि जो है हमको इस तरह के कुफ्रिया जुमलात जो है अपनी जबान पर इंसान लेकर आता है, जबकि उसको मालूम नहीं कि ये तो कितना बड़ा इफ्तिखार है उसके लिए, इतना बड़ा इफ्तिखार है कि उसको अदम से खुदा ने उसको वजूद उसको बख्शा, ताकि वो अगर वो ना होता तो तमाम कमालात को तय नहीं कर सकता था। खुदा ने उसको वजूद दिया है, उसको कितना ज्यादा एक जो इसके लिए रास्ते का हमवार किया कि तुम चाहो तो खुदा से कुर्ब इख्तियार कर सकते हो, उस रब्बुल आलमीन के नजदीक हो सकते हो, उस आला तरीन मकामात पर पहुंच सकते हो जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। तो अगर इस जहस से इन तमाम चीजों को देखा जाए तो इंसान के जो तुम पूरा जिसे कहते हैं कि अगर उसका वर्ल्ड व्यू जो चेंज हो जाए, उसके जो सोचने का अंदाज चेंज हो जाए उसके, तो ये वो चीज है जो कुरान के अंदर इस पर तवज्जो की जरूरत है कि इन चीजों पे तवज्जो इंसान की जो बेसिस जो है, उसकी जो सोचने का अंदाज है, उसको तब्दील कर देती है। अब इंसान उस तरह से नहीं सोचता कि जिस तरह से काफिर सोचता है, जिस तरह से खुदा का इनकार करने वाला सोचता है। इंसान जो है फिर खुदा हर हर लहजे के अंदर जो है इस तरह से खुदा का शुक्र बजा लाता है। जब अपने वजूद को देखा खुदा की तरफ से है, तो जब वजूद ही मेरा असल बका ही मेरे खुदा की तरफ से है, तो हर उसी के ऊपर इंसान अगर शुक्र करता चले जाए, बाकी नेमतें तो अपनी जगह पर, तो इंसान तो ये इंसान इसका निज़ाम अखलाकी, निज़ाम अखलाकी हो, निज़ाम सियासी हो, हर किस्म का निज़ाम जो है किस तरह से खुदा ही के इन सिफात के ऊपर, खुदा के पास चूंकि मुल्क है, उसके पास इख्तियार है, तमाम चीज़ें उसके पास हैं, ये नेमत तमाम कमालात का वो सर चश्मा है। बस ये इस तरह तमाम सिस्टम जो है इस्लाम के और इंसान की जो फिक्री जो बुनियादें हैं, इस तरह से सामने आती हैं। इसके बाद जो खुदा इरशाद फरमाता है आगे, कुदरत के हवाले से कल कुछ गुफ्तगू हो गई थी, मजीद उसके आगे इसको स्किप कर देते हैं। अगली आयत के अंदर इरशाद होता है हुवल्लज़ी खलक़कुम, खुद खुदा ने जो है तुमको खल्क किया, कि अभी इसका जिक्र हुआ। फमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मोमिन, अब खुदा ने खल्क कर दिया इंसान को, अब तुम्हें दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह ने इस मारिफत को इस्तेमाल करते हुए, इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए, इस फिक्र को इस्तेमाल करते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा कि हाँ एक बनाने वाला मौजूद है, एक खुदा है, और उसके बगैर ये हो नहीं सकता। इसकी खालिकियत के ऊपर जो है वो बेहतरीन दलील खुद ये तमाम वजूदात हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। किसी हर किस्म के इस्तदलाल जो बाकी इस्तदलालत हैं, जो इस इल्मी फलसफी इस्तदलाल को छोड़कर, हर इंसान जो अपनी जो बिल्कुल बेसिक अक्ल से इस्तेमाल करते हुए अगर जब देखता है इन चीज़ों को, इस नेचर के अंदर जाता है, अपने जिस्म के अंदर देखता है, बाहर देखता है, हर जगह, तो क्या उसका खुद गवाही देगा अगर जो उसका वो जिसे कहते हैं ना कि मुखालिफत पर ना आ जाए जानबूझ कर खुदा की, वो अल्लाह का उसका नफ्स सालिम हो तो कहेगा कि वाकई इसको बनाने वाले कौन, और बनाने वाला भी कौन है, कितना बाअज़मत है कि जिसने इन चीज़ों को जो है वो बनाया। बस एक वो ग्रोह था कि जो ईमान लाता है, फमिनकुम मोमिनुन वमिनकुम काफिरुन, ये पहले बल्कि जो है काफिर का जिक्र, फमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मोमिनुन। शायद पहले काफिर का जिक्र क्यों हुआ, शायद इसकी वजह है कि अक्सरियत जो है वो कुफ्र इख्तियार करती है, अक्सरियत उसका इनकार कर देती है, अक्सरियत जो है छुपा देती है। शायद छुपाना भी इस माना में कि छुपाए, छुपाने का मतलब क्या होता है, जब एक चीज हो और उसके ऊपर जो है वो उसको ढांप दिया जाए। अब बईद नहीं है कि इंसान जो है वो कितने मौके पर हकीकत को जानता है लेकिन उसको जो है इनकार कर देता है उसके मफादात की खातिर, कि अगर मैं इस हकीकत को जो है कबूल कर लूंगा तो जो है जिसे कहते हैं कि अगर मैं कह दिया कि मैं साहिब इख्तियार नहीं बल्कि साहिब इख्तियार खुदा है, तो फिर उसकी बात माननी होगी, उसके सामने जो है सर तस्लीम खम करना होगा। तो मैं पहले मरहले में ही इसका इनकार कर दूं, मैं खुदा के वजूद ही का इनकार कर दूं। जैसे कहते हैं ना कि वो मदरसे में जो है वो जब कहा गया कि बच्चे से जो है तुम जो है पढ़ो अलिफ, तो उसने कहा नहीं अब नहीं पढ़ूंगा। कहा कि क्यों नहीं पढ़ोगे, कहा कि अलिफ पढ़ूंगा तो फिर बे की ना बताएगी, फिर बे पढ़ूंगा तो बे की ना बताएगी, तो मैं अलफ अलिफ ही ना पढ़ूँ ताकि जो है वो आगे का मसला जो है वो। तो जब जैसे ही आप इसको कबूल कर लेंगे कि हाँ इस दुनिया का कोई खालिक है, मालिक है और साहिब इख्तियार है, तो फिर जो है मरहला शुरू हो जाएगा। अब जबकि उसको साहिब इख्तियार मान लो तो फिर उसकी बात भी मानो। तो मैं पहले ही मरहले में कह दूँ नहीं 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 मैं इसके ऊपर, इस हकीकत के ऊपर जो है पर्दापोशी कर लूँ, उसके ऊपर उसको ढांप दूँ, ताकि मुझे अगले स्टेप में जो है वो ये बात ही आगे ना आए। तो बाज़ लोग होते हैं वो जो कि अक्सरियत क्या होती है, इन तमाम अपने मफादात को, इन चीज़ों को जो है वो उसका उसको सही तरह से, चूंकि अपनी अपनी ज़ात उनके आगे जो है महवर होती है, तो उसके मफादात की खातिर इन तमाम हकाई को छुपाते हैं, अक्सर जो है काफिर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ जो है वो ईमान लाते हैं, अपनी इस मारिफत को, इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए खुदा पर ईमान लाते हैं, कबूल करते हैं, गवाही देते हैं कि नहीं ये खुदा है, और वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। अब जबकि तुम दो ग्रोह हो गए, अब देखें इसका लिंक कितना खूबसूरत है, कि अब जबकि तुम दो ग्रोह हो गए, एक काफिर हो गया, एक मोमिन हो गया, और इसका रब जो है वो पिछली आयतों से वाजे हो गया कि खुदा की वो सिफात है, इस तरह से उसको साहिब इख्तियार है, उसके पास कुदरत है, उसके पास हमद है, सब कुछ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी एक अक्सर ने जो है वो इनकार कर दिया, बाज़ लोग ईमान भी ले। अब जबकि ये जो दो ग्रोह हो गए, एक काफिर हो गया, एक मोमिन हो गया, एक इनकार करने वाला हो गया और एक ईमान लाने वाला हो गया, अब इन दोनों फौरन कहा कि वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और खुदा जो है जब जो तुम करते हो उस पर आगाह है। इसका अमल से किस क्यों उसको अमल से जोड़ा, इसका मतलब है कि ईमान और कुफ्र जो है दोनों का जो कहाँ पे जाहिर होते हैं, इसका जो समरा आता है वो अमल से आता है, इसका जो रिलेशन है। ऐसा नहीं कि इंसान जो है जो मोमिन हो गया तो फकत वो मोमिन कहने के बाद कि मैं तो ईमान ले आया खुदा पर, तो जो है वो अमल से इसको कोई ताल्लुक ना हो, बस वो ईमान लाना काफी हो। फौरन उसका जो है वो अमल से रिश्ता जोड़ कर जो बताया कि अगर ईमान होगा तो उससे जो है वो मोमिनाना अमल जाहिर होगा, अगर कुफ्र होगा तो उससे काफिराना अमल जाहिर होगा।
ऐसा नहीं है कि जो हमारे अकायद होते हैं उसका अमल से कोई ताल्लुक ना होता, नहीं, बहुत ज्यादा गहरा इसका रिलेशन, जैसा मेरा ईमान होता है, जैसा मेरा एतिकाद होता है, अगर इनकार करूंगा काफिराना जो है मेरी थिंकिंग होगी तो काफिराना अमल उससे जाहिर होगा, जिंदगी मेरी काफिराना नजर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो उसकी अफकार कुछ हो, उसके अमाल कुछ हो, खुद ब खुद उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, खुद ब खुद उसके अंदर उसकी अक्कासी होती है। बस अगर एक मोमिन है तो होना उसकी, अगर वाकई ऐसा होगा, फकत जो लफ्जी जो है वो मोमिन और लफ्जी काफिर नहीं है बल्कि वो वाकई मोमिन है, तो उसके अंदर जो आमाल है वो खुद ब खुद उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे रिफ्लेक्ट या कम हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस ईमान के दर्जात के अंदर फर्क है। जैसे एक नूर है, फर्ज करें नूर की मिसाल ले लें, जितना ज्यादा नूर कवी होगा उसके जो है असर इतना ही ज्यादा जाहिर होगा। आया हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि नूर बहुत ज्यादा कवी हो लेकिन उसमें से रोशनी ना निकले, आप कहें ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अजीब बात है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं तस्वुर करूं एक लाइट का बहुत ज्यादा रोशन, जिसका जो है उसने पता नहीं कितने वॉट की जो है, कितने हजार वॉट की जो चीज हो, लाइट हो, बल्ब हो, लेकिन उसमें से रोशनी ना निकल रही हो, असल वो कहेगा मैं तस्वुर ही नहीं कर सकता इस चीज का, ये हो कैसे सकता है। मैं आपसे कहूँ कि आप सूरज का तस्वुर करें लेकिन उसमें रोशनी ना हो, एक सितारे का, तो ये हो नहीं सकता। अब लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके दर्जात का फर्क होता है, जितना ज्यादा उसके अंदर कुवत होगी उसकी नूर की, उतना ही ज्यादा वो रोशनी ज्यादा फैलाएगी, उसके उसके अंदर जाहिर होगा, उसकी रेस के जरिए से जो है जाहिर होगा, खुद ब खुद होगा उसको किसी को। इसी तरह से ईमान के भी दर्जात हैं, जितना ज्यादा ईमान शदीद तर होते चले जाएगा उसकी जिंदगी के अंदर, वो अमाल खुद ब खुद उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जाहिर होते चले जाएंगे। इसीलिए जो है अम्बिया और मासूमिन अलैहिस्सलाम, औलिया अलैहिस्सलाम के जो अकाय जो ईमान है वो चूंकि अपनी आला तरीन मंजिल पर है, इसलिए उनके अमल भी हमको इसी तरह से नजर आते हैं। हम कहते हैं कि मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो है वो नमाज में उनकी पैर से जो है तीर को जो देखा गया कि ये बेहतरीन मौका है कि इस वक्त जो है इनके उससे जो है पैर से जो तीर निकाला जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो जब नमाज में होंगे तो इस हद तक खुदा के सामने मुतवज्जे होंगे कि उनको किसी और चीज़ का ख्याल ही ना होगा, इसलिए जो है वो आसानी से उस वक्त निकाल लेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसका इसका उस ईमान जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा कवी है कि उसके जो अमल जो इस तरह से जाहिर होता है, उस अमल भी उतना ही स्ट्रांग होता है, जिसका आम हम जो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हो कैसे सकता है। वो इंसान जिसकी जो है वो जब नमाज में जो तकबीर कहता है, पहली तकबीर उस वक्त से लेकर जब वो आखिरी तकबीर कहता है सलाम के बाद, उस वक्त तक पूरी जब जो शख्स नमाज में जो है वो गायब हो और फिर उसका जहन जो है किसी और तरफ चला जाए, अपने हिसाब किताब, दुनियावी हिसाब किताब के अंदर, आज कारोबार में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, जॉब पे क्या हुआ, घर में क्या हुआ, ये तमाम मसाइल के अंदर चला जाता है, फिर जब सलाम का जो आखिरी जो तकबीर होती है उसको दोबारा से नमाज में आ जाता है। तो एक हम लोगों की नमाज है क्योंकि हमारा ईमान इस किस्म का है, तो हमारी तवज्जो जो है वो अपनी ही दुनिया में अपने अंदर है, लेकिन वो जो कि जिसका ईमान उस लेवल पर होता है, लहुल मुल्क को सही समझा है, जिसने जो है वो खुदा के कुदरत को सही तरह समझा है, जिसने लहुल हम्द को जो है सही तरह से समझा है, इन तमाम चीज़ों को जो है जितना ज्यादा उसका एतिकाद होता चला जाता है, वो फकत खुदा ही को अपने सामने हाजिर नाजिर उसको देखता है, तो फिर उसके तवज्जो भी इस तरह से है, उसके जो अमाल भी इसी तरह से जाहिर होते हैं। बस काफिराना अमल काफिराना अकायद का नतीजा है, मोमिनाना अमल जो है वो ईमान वाले उस ईमान का नतीजा है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन के दरमियान जो है वो आप उसको फासला कर दें और अकायद को अमल से जो इसका ताल्लुक खत्म कर दें, ये खुद ब खुद होने वाली चीज़ है। बस खुदा जो है वो यहाँ पे कहता है कि जैसे भी तुम अमाल करोगे तो खुदा उसको जो है वो देखने वाला है और उसको जो है वो देख रहा है, तो इसका जो है देखने का मतलब क्या है, यानी बिलाखिर एक दिन तुमको हिसाब देना, जब इसका मतलब समझ में आता है ना, वरना मैं कहूँ कि दे अगर हिसाब किताब ना हो और फकत खुदा कहे मैं देख रहा हूँ तो खूब देखता रहा, लेकिन कहाँ पे वो माना समझ में आता है कि बसीर देख रहा है कि तुम क्या अमल करते हो खुदा फिर जो है इनकार करके, और तुम क्या अमल करते हो खुदा पर ईमान लाने के बाद, खुदा दोनों के अमाल को जो अच्छी तरह से देख रहा है, और एक दिन तुमको एक दिन हिसाब देना होगा, एक दिन हिसाब किताब होगा। तो जो इंसान इस तरह से जब ईमान लाता है तो उसका पूरा वजूद जब खुदा के सामने उसको कबूल कर लेता है और इन तमाम हकायक को कबूल कर लेता है, तो हर उसका अमल चाहे जवारी ही हो, उसके कहते हैं कि इंसान के अज़ा और जवारी से जो अमाल जाहिर होते हैं वो भी, और उसके जो है वो आंखों से, कानों से, हाथों से, ये तमाम अमाल जो कि इंसान जाहिर में करता है वो भी, और वो अमाल जो कि उसके ख्याल अंजाम देते हैं, उसके जो फिक्र अफकार अंजाम दे रहे होते हैं, जो इंसान फकत अपनी जो सोच रहा है, जिसका इसने इरादा किया है, जो उसकी नीयतें हैं, वो सब के सब जो है इन अमाल को फकत नहीं बल्कि हर चीज़ को जो है खुदा जानते हैं, क्योंकि वो भी एक अमल है, अमल कल्बी है, अमल जवानी ही है, वो भी जो है खुदा खुदा उसको भी जानता है। तुम ये ना समझो कि तुम्हारे इरादों को खुदा नहीं जानता, नहीं, खुदा तुम्हारे इरादों को भी जानता है, तुम्हारी नीयतों को भी जानता है, और इसीलिए जो कहा गया कि बाज़ोकात नीयत जो इंसान की बाज़ोकात उसके अमल से ज्यादा बेहतर होती है, मोमिन की नीयत जो है उसके अमल से ज्यादा बेहतर है, اس کی نیت تو بہت اچھی ہے, کرنا بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن بعض مسائل کی وجہ سے, بعض مشکلات کی وجہ سے ممکن ہے عمل میں اس کو نہ لا سکے. بہت زیادہ خیر خواہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر جو ہے نیکی پھیلے, اس دنیا کے اندر جو ہے علم پھیلے, اس دنیا کے اندر جو ہے مشکلات ظلم جو ہے ختم ہو سکے, میں اس کے اندر کوشش کر سکوں, یہ کر سکوں, وہ کر سکوں, بہت اس کی نیتیں اچھی ہیں, لیکن عمل میں شاید نہ کر پائے. تو خدا اس کو کس پہ کہتا ہے کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, اور کافر کا جو نیت ہے اس کے عمل سے بدتر ہے, کیونکہ جو ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, بہت زیادہ برا کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ عمل میں شاید اتنا نہ کر پائے. تو یہ خدا, خیر یہ ایک الگ سے بات آ گئی. تو خدا انسان کے جو ہر قسم کے عمل پہ جو ہے وہ آگاہ ہے, چاہے تمہاری جو ہے ظاہری اعمال ہوں, چاہے تمہاری نیات ہوں, اس سب پہ جو ہے وہ خدا سے آگاہی رکھتا ہے, اور ایک دن انسان کو اس کا سب کا خدا کے بارے میں بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہوگا. اس کے آگے جا کے پھر ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض بالحق. خیال میں وقت شاید زیادہ ہو گیا, اگلی آیت کو اگر آپ لوگ کہیں تو اگلی نیکسٹ اس میں رکھیں, اس کو کہیں تو اس کو ادامہ دیں. میں کچھ پیغامات آ رہے ہیں میٹنگ میں. کہنا کہ 5 سے 10 منٹ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے. تو اگلی آیت کے اندر کیا ہے, اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض, خدا نے جو ہے وہ زمینوں اور آسمان کو خلق کیا بالحق. یہ بالحق خلق کرنا اور بھی جگہ پہ ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ بعض آیت میں کہ ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے آسمان و زمین کو خلق نہیں کیا مگر حق کے اوپر. یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے حق کے ساتھ, یعنی کیا حق, اور اس کا جو ہے جو حق کے مقابلے میں جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے, تو جو باطل ہے حق کے, جو اگر ہم کو سمجھنا چاہیں کہ حق سے کیا مراد ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس کا اپوزٹ